क्या हम इस चीज़ को इस तनाजुर में देख सकते हैं कि अगर हम तालीमी निज़ाम के हवाले से बात करें तो माशाल्लाह से जो हमारे शोबे हैं दीनी तालीम के, वो तो दीनी तालीम बहुत अच्छे तरीके से फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जो दुनियावी तालीम के हैं वो दुनियावी तालीम को लेके चल रहे हैं। क्या कोई ऐसी इतदाल की सूरत बनाई जाए कि दीनी और दुनियावी तालीम इतदाल के साथ दोनों एक साथ लेके जाई जाएँ, जो ज़हीन दिमाग हैं वो इन दोनों चीज़ों को बरकरार रखें, ताकि जब हमें आगाही हासिल हो तो दीन और दुनिया दोनों की ही हो।
देखिए, दीनी तालीम जिसको आप कहते हैं उसके दो पहलू हैं। एक है किसी आदमी का दीन का आलिम बनना, जैसे किसी आदमी का डॉक्टर बनना, तो ये इख्तिसास है, स्पेशलाइजेशन है, ये सब लोग नहीं कर सकते। सारे लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, सारे लोग दीन के आलिम नहीं बन सकते। दीनी तालीम में अगर आप आलिम बनने का कोई इदारा कायम करते हैं या आप तिब में डॉक्टर बनने का कोई इदारा कायम करते हैं तो ये चंद लोग ही होंगे। दीनी तालीम के बारे में जो कुरान मजीद ने हुक्म बयान किया है, सूरह तौबा के आखिर में बयान किया है, वो शुरू यहां से होता है कि मा कानल मोमिनून अल यनफिरु काफा, सारे मुसलमान ये काम नहीं कर सकते, इसलिए कि हर आदमी तो आलिम नहीं बनना, तो वो तो चंद लोगों ही के लिए होंगे इदारे।
सही।
वो कब शुरू होने चाहिए? 12 साल की बुनियादी तालीम के बाद। यानी 12 साल की जो बुनियादी तालीम है ये हर बच्चे का हक है और ये ब्रॉड बेस वसी बुनियाद होनी चाहिए। इसके बाद आप इख्तिसास या स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंसदान बनना है, किसी और शोबे में कमाल पैदा करना है, आलिम बनना है, तो जाइए। तो पहले 12 साल की तालीम तो होनी ही ब्रॉड बेस चाहिए, उसमें ना दीनी की तख्सीस हो सकती है ना दुनियावी की तख्सीस हो सकती है। पहले 12 साल की तालीम हमें इस उसूल पर देनी चाहिए कि सबसे पहले उसमें बच्चे को इस दुनिया में जीना सिखाया जाए, कतार कैसे बनानी है, लोगों से बात कैसे करनी है, सौदा कैसे खरीदने जाना है, सड़क कैसे पार करनी है, किसी आदमी का हाथ पकड़ के उसकी मदद कैसे करनी है, गुफ्तगू के आदाब क्या इख्तियार करने हैं, यानी जो बुनियादी माशरती अखलाकियात हैं इससे इब्तदा करनी चाहिए उस तालीम की। और जब आप इसमें उसको रासिक कर लें उसके बाद ये तय किया जाता है कि ज़रूरी ज़ुबानें कौन सी सीखनी है बच्चे को। ये हर मुल्क हर कौम अपने लिहाज से करती है। मसलन मैं अगर पाकिस्तान में कहूँ तो ज़ाहिर है कि एक इलाकाई ज़ुबान होगी जिससे तालीम की इब्तदा की जाएगी। हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, बच्चों को सीखनी चाहिए। अंग्रेज़ी ज़ुबान हमारे यहाँ राबते की ज़ुबान है, अरबी हमारी मज़हब की ज़ुबान है, तो वो ज़ुबानें भी मसलन यूरोप में अगर आप तालीम पाएंगे तो वहाँ चूंकि यूनान से और रोमा से होते हुए लोग आ रहे हैं तो ग्रीक लैटिन यानी उनकी एक ख़ास अहमियत है, वो सीखनी पड़ती हैं आपको। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप मगरबी तहजीब की तारीख से
वाकिफ़ नहीं होंगे,
यानी बेताल्लुक होकर रह जाएंगे।
बिल्कुल सही।
तो बिल्कुल इसी तरीके से ज़ुबानों का फैसला करते हैं, कौन सी ज़ुबानें आपकी तारीख की ज़रूरत हैं, कौन सी ज़ुबानें आपकी मजहबी ज़रूरत हैं, कौन सी ज़ुबानें आपके बैनुल-अक़वामी मामलात की ज़रूरत है। 3-4 ज़ुबानें बच्चा आसानी से सीख लेता है, तो ज़ुबानों का फैसला किया जाता है। इसके बाद कुछ फ़नून हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, जैसे साइंस है। ज़ाहिर है कि ये वो चीज़ें हैं कि जिनके बगैर आज की दुनिया में आप इल्म की ज़ुबान ही इख्तियार नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स क्या है? वो असल में साइंस की ज़ुबान है।
सही।
तो आप ये भी एक तरह की लैंग्वेज ऐसे आप सीखते हैं। साइंस हमारी ज़िंदगी का अहाता कर चुकी
है। बिल्कुल ठीक है।
यानी उसकी इजादात, उसके इंकशाफात, वो तमाम चीज़ें उसका। इसी तरीके से माशरती उलूम की, सोशल साइंसेज की कुछ चीज़ें हैं जिनसे बच्चे का तारुफ इब्तदाई में बहुत ज़रूरी होता है। कुछ स्किल्स हैं, कुछ हुनर हैं जो उसको सीखने होते हैं, जैसे आप बच्चे को ड्राइंग करना सिखाते हैं, कुछ तरह की चीज़ें। तो ये ब्रॉड बेस एजुकेशन का मैंने एक अजमाली सा नक्शा आपके सामने रखा है, ये होगा। इसमें जाहिर बात है कि आप उसको इस काबिल भी करेंगे कि वह अपने मजहब तक रसाई हासिल कर सके, यानी क्योंकि वो एक मुसलमान बच्चा है, या वो मिसाल के तौर पर मसीही बच्चा है तो उसकी रसाई होनी चाहिए। क्योंकि ब्रॉड बेस्ड तालीम का मतलब ही ये है कि बच्चे को कल ये एहसास ना हो कि फलां चीज़ मेरी ज़रूरत थी। मैं कहता हूँ उसने कल मज़हब का इनकार करना है तब भी उसकी ज़रूरत है कि वो मज़हब तक रसाई के बाद इल्म व अक़ल की बुनियाद पे इनकार करे, अगर उसने इनकार करना है। यानी जाहिर है कि हम तो एक मुस्बत जज्बे से उसको सिखाना चाहते हैं,
बाद फिर वो स्पेशलाइजेशन की तरफ जाए।
ये तालीम तो हर बच्चे को मिलनी चाहिए, ये वसी बुनियाद तालीम है, ब्रॉड बेस एजुकेशन है। पहले 12 साल की तालीम यही होनी चाहिए। इसके बाद हर बच्चा फैसला करता है और ये फैसला होना शुरू हो जाता है कोई 8 نو سال کی تعلیم کے بعد رجحان نمایاں ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے کدھر جانا ہے. تو اس میں جس طریقے سے آپ نے مثال کے طور پر سائنس کے کچھ گروپ بنا رکھے ہیں, آرٹس کے کچھ گروپ بنا رکھے ہیں, فنون کے بنا رکھے ہیں, آپ اپنے اسکولوں کے اندر ایک دینیات گروپ بھی متعارف کرا دیں,
قرآن پہ
یعنی جن لوگوں کا ادھر کا رجحان ہو تو وہ اس میں چلے جائیں.
اور صحابہ کرام کے درمیان بھی ایسا تھا کہ ہر شخص خالد بن ولید نہیں تھا اور ہر شخص عبداللہ بن مسعود بھی نہیں تھا.
جی بالکل, صحابہ کرام میں مثال کے طور پر جو لوگ علماء صحابہ کہے جاتے ہیں جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے, اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے, تو یہ علماء صحابہ ہیں. اسی طرح لیڈر ہیں بڑے جیسے سیدنا ابو بکر ہیں, جیسے سیدنا عمر ہیں. تو ہر آدمی ہر کام کے لیے نہیں ہوتا, لیکن جو بنیادی تعلیم ہے جس کو آپ براڈ بیس تعلیم کہتے ہیں, جو ہر بچے کا حق ہے, وہ ایسے دی جاتی ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا. وہ اس طرح نہیں دی جا سکتی کہ ایک دینی تعلیم کا ادارہ بنا دیں, ایک ڈاکٹری کا اسکول بنا دیں, یہ بعد کے مسائل ہیں. پہلے براڈ بیس ایجوکیشن ملنی چاہیے, اور میرے نزدیک یہ ہر بچے کا بنیادی انسانی حق, یعنی کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس سے بچے کو محروم کر دیں. پوری سوسائٹی کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے.